लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे याचना करते हैं कि मानव व्यक्ति की गरिमा पर हमला करने वाले मृत्यु दंड का प्रत्येक देश में कानूनी रूप से उन्मूलन किया जा सके। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है कजाकिस्तान में संत पापा फ्रांसिस की प्रेरित यात्रा पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का, सिस्टर अनुग्रह मिंज एवं सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। संत पापा फ्रांसिस अपनी 38वीं प्रेरित यात्रा पर इस समय कजाकिस्तान में हैं। 13 से 15 सितंबर तक अपनी 3 दिवसीय प्रेरित यात्रा के प्रथम दिन संत पापा ने नूर सुल्तान में कजाकिस्तान के अधिकारियों और प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए उन्हें शांति स्थापक बनने का आह्वान किया। वार्ता और मिलन की आवश्यकता पर बल देते हुए संत पापा ने नेताओं का ध्यान युद्ध और अशांति की ओर आकृष्ट किया तथा कहा कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे नेताओं की आवश्यकता है जो आपसी समझ एवं वार्ता में बढ़ते हुए शांति में विश्व की स्थापना कर सके। इसके लिए हमें समझ, धैर्य और वार्ता की जरूरत है। गौर किया जाए कि विश्व स्तर पर आयोजित यह सम्मेलन ऐसे समय में हो रहा है जब यूक्रेन समेत कई देशों में भयंकर युद्ध एवं तनाव जारी है। इस बीच वैटिकन प्रेस कार्यालय ने एक विज्ञप्ति जारी कर बतलाया कि 14 सितंबर को राजधानी नूर सुल्तान के विदेश मंत्रालय में परमधम पीठ एवं कजाकिस्तान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। प्रेस कार्यालय ने समझौता के बारे बतलाया कि यह 1998 में द्विपक्षीय समझौते के अनुच्छेद 2 को लागू करना चाहता है, जिसके अनुसार कजाकिस्तान में कार्तिक विश्वासों की प्रेरित देखभाल में संलग्न विदेश से कलीसिया के सदस्यों और धर्म सामाजिकों को वीजा एवं निवास की अनुमति पाने की सुविधा प्रदान की जाएगी। कजाकिस्तान में प्रेरित यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में 14 सितंबर को संत पापा फ्रांसिस ने नूर सुल्तान के आजादी भवन में विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं के 7वें कांग्रेस में भाग लिया। हर 3 साल में होने वाले इस कांग्रेस के उद्घाटन के पूर्व मौन प्रार्थना की गई। संयुक्त राज्य अमेरिका पर 11 सितंबर 2001 के दुखद हमलों के मद्देनजर और 2002 में संत पापा जॉन पॉल द्वितीय की असीसी की भावना नामक दूसरी बैठक के बाद विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की कांग्रेस 2003 में अस्तित्व में आई। धार्मिक, सांस्कृतिक, नागरिक, सरकारी और गैर सरकारी प्रतिनिधियों से बनी कांग्रेस में 50 देशों से 100 से अधिक प्रतिनिधिमंडल भाग ले रहे हैं। राष्ट्रपति कासिम जोमात तोकायेव के निमंत्रण पर संत पापा फ्रांसिस इस सभा में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने के लिए कजाकिस्तान पहुंचे हैं ताकि विश्व शांति को बढ़ावा देने हेतु मुलाकात और संवाद की जा सके। विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं के 7वें कांग्रेस की विषय वस्तु है कोविड-19 महामारी के बाद की अवधि में आध्यात्मिक और सामाजिक विकास पर ध्यान केंद्रित करने हेतु विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की भूमिका। उद्घाटन समारोह 10 बजे आजादी भवन के बड़े गोल टेबल पर शुरू हुआ। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्त तोकायेव ने कांग्रेस का उद्घाटन किया। तत्पश्चात संत पापा फ्रांसिस ने कांग्रेस को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में सच्ची धार्मिकता, धार्मिक स्वतंत्रता, दुर्बलता और जिम्मेदारी, शांति की चुनौती, हमारे आम घर की देखभाल, एक साथ आगे बढ़ने आदि जैसे महत्वपूर्ण आधुनिक विषयों की ओर नेताओं का ध्यान आकृष्ट किया।
कजाकिस्तान में संत पापा फ्रांसिस ने बुधवार सुबह देश की राजधानी नूर सुल्तान में विश्व और पारंपरिक धर्मों के नेताओं की 7वीं कांग्रेस के प्रतिभागियों को संबोधित किया। संत पापा ने सभी को भाइयों और बहनों, उस भाईचारे के नाम पर जो हमें एक ही स्वर्ग के बच्चों के रूप में एकजुट करता है, के रूप में संबोधित करते हुए अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि अनंत के रहस्य से पहले जो हमें ऊपर उठाता है और आकर्षित करता है। धर्म हमें याद दिलाते हैं कि हम प्राणी हैं, सब शक्तिमान नहीं। हम सब उसी स्वर्गीय लक्ष्य की ओर यात्रा कर रहे हैं। यह साझा प्रकृति स्वाभाविक रूप से एक सामान्य बंधन और प्रामाणिक बंधुत्व बनाती है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि धर्मों की मुलाकात हमेशा सम्मान, ईमानदारी से संवाद, प्रत्येक इंसान की अहिंसक गरिमा के लिए सम्मान और आपसी सहयोग द्वारा चिन्हित मानवीय संबंधों पर आधारित होगा। संत पापा ने अपने संबोधन में कजाकिस्तान के सबसे प्रसिद्ध कवि और इसके आधुनिक साहित्य के पिता अबाई को उद्धृत किया, जिनके लेखन में गहरी धार्मिक भक्ति और इन लोगों की महान आत्मा को दर्शाया गया है। उन्होंने याद किया कि कैसे अबाई ने आध्यात्मिकता को विकसित करने के लिए जीवन और अर्थ के बारे में अंतिम प्रश्नों को अक्सर संबोधित किया। उन्हें उद्धृत करते हुए संत पापा ने कहा कि यह आत्मा को जीवित और मन को साफ रखता है और लोग विश्वास के लोगों को जीवित आत्माओं और मन के साफ व्यक्ति तथा एक प्रामाणिक धार्मिकता के उदाहरण के रूप में देखते हैं। संत पापा ने कहा कि कट्टरवाद हर पंथ को दूषित और भ्रष्ट करता है, इसलिए हमारे पास खुला और दयालु हृदय होना चाहिए। संत पापा फ्रांसिस ने तब धार्मिक स्वतंत्रता के महत्व को समग्र मानव विकास को एक आवश्यक शर्त के रूप में इंगित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वयं के विश्वास की सार्वजनिक गवाही देने का अधिकार है। वह इसे प्रस्तावित कर सकता है, परंतु किसी पर भी जोर जबरदस्ती से धर्मांतरण नहीं कर सकता। कांग्रेस के विषय पर विचार करते हुए कि महामारी के बाद की दुनिया में आध्यात्मिकता और सामाजिक समर्थन कैसे प्रदान किया जाए, संत पापा ने चार चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया और प्रतिभागियों से उद्देश्य की एक बड़ी एकता की दिशा में एक साथ काम करने का आग्रह किया। पहली चुनौती है दुर्बलता और जिम्मेदारी। संत पापा ने कहा कि कोविड-19 महामारी ने हमारी सामान्य दुर्बलता और मदद की आवश्यकता को उजागर किया है। महामारी के दौरान उभरी साझा दुर्बलता की भावना हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हम सब आगे बढ़ें जैसा हमने पहले नहीं किया था, लेकिन अब और अधिक विनम्रता और दूरदर्शिता के साथ। दूसरी वैश्विक चुनौती जिस पर संत पापा ने प्रकाश डाला वह है शांति की चुनौती। यद्यपि धार्मिक नेताओं द्वारा विशेष रूप से हाल के दशकों में चर्चा की गई युद्ध और टकराव की विभीषिका अभी भी दुनिया को परेशान कर रही है, संत पापा ने कहा इसके लिए महान धर्मों द्वारा सक्रिय रूप से एकजुट होने और शांति के लिए प्रतिबद्ध होकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। ईश्वर शांति है, वे हमेशा शांति के रास्ते पर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आइए हम संघर्षों को हल करने की आवश्यकता पर जोर देने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करें। शक्ति के अनिर्णायक साधनों, हथियारों और धमकियों से नहीं, बल्कि केवल स्वर्ग द्वारा प्राप्त आशीष और मनुष्य के योग्य मुलाकात, संवाद और धैर्यपूर्ण बातचीत से, जो विशेष रूप से युवा और आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए प्रगति करते हैं। आइए हम अधिक हथियारों में नहीं बल्कि शिक्षा में निवेश करें। संत पापा ने कहा हमारे सामने तीसरी चुनौती भाईचारे की स्वीकृति है। आए दिन बच्चे, प्रवासी, बुजुर्ग लोग अलग रखे जाते हैं, फिर भी हर इंसान पवित्र है। युद्ध, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के कारण बड़े पैमाने पर लोगों के पलायन को याद करते हुए संत पापा ने कहा कि दुनिया को इसकी याद दिलाना विशेष रूप से धर्मों का कार्य है। उन्होंने कहा सृष्टिकर्ता जो अपने प्रत्येक प्राणी की देखभाल करती हैं, हमें दूसरों में एक भाई और एक बहन का चेहरा देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतः हमारा कर्तव्य है कि हम दूसरों को अपने ही भाई बहनों के रूप में स्वीकार करें। अंतिम चुनौती जिसका सामना हम सभी करते हैं वह है अपने आम घर की देखभाल। हमें प्राकृतिक पर्यावरण को प्रदूषण, शोषण और तबाही से होने वाले नुकसान से बचाना है। उन्होंने कहा कि कैसे शोषण की मानसिकता हमारे आम घर को नष्ट कर रही है और दुनिया की सम्मानजनक और धार्मिक दृष्टि को ग्रहण की ओर ले जा रही है। अंत में संत पापा फ्रांसिस ने सभी को एक साथ आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया ताकि धर्मों की यात्रा मित्रता द्वारा अधिकाधिक चिन्हित हो सके। ईश्वर हमें लगातार संवाद और सही उद्देश्य के माध्यम से खुला और भ्रातृत्वपूर्ण मित्रता विकसित करने में सक्षम करें।
रिलीजन वर्ल्ड के संस्थापक भव्य श्रीवास्तव, जो विश्व एवं पारंपरिक धर्मों के नेताओं के साथ में कांग्रेस में भाग ले रहे हैं, उन्होंने वैटिकन न्यूज को बतलाया कि कांग्रेस में भाग ले रहे नेता किन मुद्दों पर बातें कर रहे हैं। उन्होंने कहा,
आज हम कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान में है, जहाँ पे सातवां धर्म कांग्रेस, रिलीजन कांग्रेस हो रही है। इस रिलीजन कांग्रेस के पीछे जो सोच है वो यही है कि दुनिया में जो आज के हालात हैं उनको बदलने के लिए धर्मगुरु क्या कर सकते हैं, एक तरह से इस पे चर्चा हो रही है। खासकर पैंडेमिक, कोविड पैंडेमिक के बाद, महामारी के बाद, इंसान के अंदर कहीं ना कहीं एक तरह का भय समा गया था कि भगवान या फिर धार्मिक संस्थाएं क्या कर रही हैं कि वो उसे बचा नहीं पा रही है। उसके बाद से जिस तरह से रशिया यूक्रेन का मामला खुलकर सामने आया, उसके बाद से भी हमें एक तरह की धर्म में कसमसाहट सी नजर आ रही थी। ऐसे दौर में हम जब यहाँ पे देखते हैं कि पोप फ्रांसिस या फिर ग्रैंड इमाम आते हैं और वो ये धर्म पर खुलकर बात करते हैं, तो हमें एक तरह की आशा जगती है। तो यहाँ पे जिस तरह की माहौल में चीजें हो रही हैं, उसमें तो एक चीज देखने को बड़ी खास मिले कि सारे धर्मों में एक निश्चितता आ रही है कि हमें जो समाज की चुनौतियां हैं या मानव के लिए जो चुनौतियां आज बनती जा रही हैं, उस पे एक साथ कार्य करने की जरूरत है। और चूंकि धर्मों में विविधता तो हमेशा रहेगी, और इस बात को आज इस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े धर्म गुरुओं ने कहा भी, अब जरूरी यह है कि उनको इस दिशा में काम करना होगा कि एक तो जो मानव जनित चुनौतियां हैं उनसे लड़ा जा सके, और साथ में दुनिया में जो बड़ी परेशानियां सिर उठा रही हैं उनको सिर उठाने से पहले ही किसी तरह खत्म किया जा सके। पोप फ्रांसिस ने आज यहाँ पे इस बात को बहुत अच्छे से समझाया कि भाई हम धर्म की आजादी कितनी ज्यादा जरूरी है, और कजाकिस्तान जैसे देशों में भी इसका बहुत मोल है। साथ ही साथ पूरी मानव जाति को इस अपनी जिम्मेदारियां समझनी होंगी, लेनी होंगी, और किसी भी तरह के निरंकुश व्यवहार से बचना होगा। और भी बहुत सारे धर्म गुरु, चाहे वो इस्लाम के हों, चाहे वो बहाई धर्म के हों, चाहे वो यहूदी धर्म के हों, सबने अपनी बात बहुत गंभीरता से रखी। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस बात को बहुत गौर से रखा कि धर्मों की बहुत बड़ी भूमिका है। हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम भारत में धार्मिक संगठन, आध्यात्मिक संगठनों के साथ सामाजिक बदलाव या जो मुद्दे हैं उन पे काम करें। इसके लिए हम अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरह के कॉन्फ्रेंसेज में जब आते हैं तो हमें ये पता लगता है कि दुनिया में सच में जो समस्याएं हैं उन पे धर्म की राय क्या है। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि धार्मिक या धार्मिक किताबों में केवल धर्म के बारे में या मोक्ष के बारे में ही कहा जाता है, तो एक तरह से यहाँ आना एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। सबको सुनना बहुत ही अच्छा लगा कि हम एक सही दिशा में बढ़ रहे हैं।
कांग्रेस के उद्घाटन एवं अधिवेशन के उपरांत संत पोप फ्रांसिस ने कुछ धर्म गुरुओं एवं नेताओं से व्यक्तिगत मुलाकात की। चौदह सितंबर को दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में संत पोप फ्रांसिस ने नूर सुल्तान के एक्सपो ग्राउंड में समारोही ख्रिस्ताग अर्पित किया। क्रूस विजय महापर्व के अवसर पर अर्पित इस मिस्सा बलिदान में कजाकिस्तान के कैथलिकों ने भारी संख्या में भाग लिया। ख्रिस्ताग का अनुष्ठान लातिनी और रूसी भाषा में किया गया। मुस्लिम बहुल देश कजाकिस्तान में कैथलिकों की संख्या करीब 1% है।
संत पापा फ्रांसिस ने कजाकिस्तान की अपनी प्रेरितिक यात्रा के दूसरे दिन नूर सुल्तान में यूखरिस्तीय बलिदान अर्पित किया। संत पापा ने क्रूस विजयी के त्योहार का मिस्सा बलिदान अर्पित करते हुए अपने प्रवचन में कहा, क्रूस मौत का फंदा है। आज का पाठ हमें दो विरोधी सांप, एक काटने वाला और दूसरा बचाने वाला का जिक्र करता है। संत पापा ने काटने वाले सांप के बारे में जिक्र करते हुए कहा कि ये सांप उन लोगों को पुनः एक बार काटते हैं जो ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते हुए पाप करते हैं। ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाना उन बातों की ओर हमारा ध्यान इंगित कराती है कि इसराइली जनता ईश्वर की प्रतिज्ञाओं और अपने विश्वास में कमजोर हो गए थे। वे इस बात पर भी विश्वास नहीं करते हैं कि ईश्वर ही उन्हें समृद्धि के देश में प्रवेश करने हेतु अपनी शक्ति से विभूषित करेंगे। संत पापा ने धर्म ग्रंथ की प्रथम पुस्तिका उत्पत्ति ग्रंथ की ओर ध्यान आकृष्ट कराते हुए पहले सांप के बारे में कहा कि कैसे वह आदम और हेवा के हृदय को जहर से भर देता है जो ईश्वर पर संदेह करने लगते हैं। सांप के वेश में शैतान उन्हें फुसलाता कि ईश्वर अच्छे नहीं हैं, वे तुम्हारी स्वतंत्रता और खुशी से ईर्ष्या करते हैं। इस भांति वह उनमें अविश्वास के बीज बोता है। अब मरुभूमि में हम सांपों को पुनः पाते हैं जो जहरीले हैं। यह आदि पाप की वापसी है। इसराइली ईश्वर पर संदेह करते और उन पर विश्वास नहीं करते हैं। वे जीवनदाता ईश्वर के विरुद्ध भुनभुनाते और उनका विरोध करते हैं। नतीजन उन्हें मृत्यु का शिकार होना पड़ता है। संत पापा फ्रांसिस ने व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन की परख करने का निमंत्रण देते हुए कहा कि कब हम ईश्वर के प्रति और अपने भाई बहनों के प्रति विश्वासी बने रहने में असफल हुए। संत पापा ने कजाकिस्तान के दुखों की ओर ध्यान गड़ाते हुए कहा,
Penso ai serpenti brucianti della violenza, della persecuzione ateista, a un cammino a volte travagliato durante il quale è stata minacciata la libertà del popolo e ferita la sua dignità.
कि मैं इस देश के जहरीले हिंसा रूपी सांपों, नास्तिक उत्पीड़न और उन सभी कठिन परिस्थितियों की याद करता हूँ। हमें उन्हें याद रखने की आवश्यकता है। यदि ऐसा नहीं होता तो वे अतीत की एक बीती घटना बनकर रह जाएगी। संत पापा फ्रांसिस ने बचाने वाले सांप दूसरे चिन्ह के बारे में कहा कि वह सांप जो हमें बचाता है वह यीशु ख्रिस्त है जो हमारे बीच में है। यीशु अपने क्रूस मरण द्वारा हमें मृत्यु के जहरीले दंश से मरने नहीं देते हैं। अपने दुख और तकलीफों का सामना करते हुए वे हमें एक नई क्षितिज प्रदान करते हैं। यदि हम ईश्वर पर अपनी निगाहें बनाए रखते तो बुराई का दंश हमें प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि अपने क्रूस की शक्ति से यीशु ने पाप और मृत्यु की जहरीली शक्ति को सदैव के लिए कुचल डाला है। उन्होंने कहा कि हम कह सकते हैं कि वे क्रूस पर एक सांप बने जिससे हम उनकी ओर दृष्टि गड़ाते हुए पाप रूपी सांपों से बचे रहें। संत पापा ने कहा, यही वह मार्ग है, हमारी मुक्ति का मार्ग, हमारा पुनर्जन्म और पुनरुत्थान, जहां हम क्रूसित यीशु की ओर देखने हेतु बुलाए गए हैं। क्रूस से हम अपने जीवन और अपने लोगों के जीवन इतिहास को एक नए तरीके से देखते हैं।
Perché dalla croce di Cristo impariamo l'amore, non l'odio. Impariamo la compassione, non l'indifferenza. Impariamo il perdono, non la vendetta.
क्रूस से हम प्रेम करना सीखते हैं, ना कि घृणा करना, करुणा ना कि उदासीनता, क्षमा ना कि बदला लेना। यीशु अपनी खुली बाहों से हमारा आलिंगन करना चाहते हैं, जो पिता ईश्वर की चाह है। अपने प्रवचन के अंत में संत पापा ने पुनः इस बात पर जोर दिया कि यीशु ख्रिस्त क्रूस से बुराई रूपी सांप के सभी विष को दूर करते हैं। अतः ख्रिस्तीय होने का अर्थ विषहीन जीवन जीना है, एक दूसरे की आलोचना नहीं करना, शिकायत, दोषारोपण और किसी की टीका टिप्पणी नहीं करना, पाप रूपी बुराई को पृथ्वी पर प्रसारित नहीं करना है। उन्होंने कहा, हमारा पुनर्जन्म क्रूसित यीशु के बेधित बगल से हुआ है, अतः हम मृत्यु के विष से अलग रहें और प्रार्थना करें कि हम ईश्वर की कृपा से पूर्ण ख्रिस्तीय बनते हुए नए जीवन की खुशी, प्रेम और शांति का साक्ष्य दे सकें। और इसी के साथ वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण समाप्त होता है। अगला प्रसारण तमिल में होगा। नमस्कार।